और लगभग दो ढाई महीने के बाद जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने मेरा नाम निर्धारित किया, और कुछ दिनों बाद मुझे पत्र आया और उसमें श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने कहा कि आपका नाम गिरिराज है गिरिराज जो है वो गोवर्धन पर्वत का नाम है जहाँ पे कृष्ण अपने गाय को चराते थे, और कभी कभी जो भक्त है एकाद शिला गोवर्धन से लेते हैं और उसकी पूजा करते भक्ति करते हैं कृष्ण का एक प्रतिनिधि के रूप में। तो यह एक बहुत ही जटिल लगा मुझे, आप समझ सकते हो कि जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है कभी भारत में आया नहीं, केवल अभी शुरू किया है, जो अर्थ वगैरह के प्रणाली को सीख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। या और अभिमान के बारे में बात करते समय मैं बहुत अभिमानी था, मेरे पारिवारिक नाम को जो टिटान था जो अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है वो नेशनल पार्क में के जो महान टिटान, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है मेरा मेरे जो मेरे जो वो जो सारे थे उनका नाम था वो टिटान ही था पूर्वज का। और जब मैंने अपना जो दीक्षा का पत्र ये जो नाम है गोवर्धन पर्वत का है, ये पर्वत का नाम है गोवर्धन का, और मैंने सोचा कि वाह प्रभुपाद जानते हैं कि सब जानते हैं, और वो जब मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जानते हैं कि मैं एक पर्वत के नाम से ही आ सकता हूँ और ये दूसरा एक पर्वत का नाम है, ये अच्छे पर्वत का नाम है। तो हम अभी यहाँ पे हैं, ये उनकी कृपा से ही हम इधर हैं, और मैं एक श्लोक पढ़ूंगा श्रीमद् भागवतम से, गोपियों ने गाया हुआ। वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यह श्रीमती राधा रानी ने गाया हुआ है, श्रीमद् भागवतम कहता है कि गोपियों ने कहा है यह। यह 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से है जो वेणुगीत के अध्याय से है। गोवर्धन पर्वत के गुणगान में श्लोक है, और इसमें बहुत सारे गहरे पाठ हैं हम सीख सकते हैं। हम श्रीमद् भागवतम से दसवें स्कंद अध्याय 21 18वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हंताय मद्र बल हरिदास वर्यो अय बोलिए यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीयवार कंदमूलये अनुवाद। सारे भक्तों में ये जो गोवर्धन पर्वत है सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरे प्रिय सखी, ये जो पर्वत जो है ये कृष्ण और बलराम के अपने ग्वाल बाल बछड़े और गायों के अपने सारे आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, पीने के लिए पानी और बहुत ही कोमल घास, गुफाएं, फल फूल और सब्जियां प्रदान करता है। और इस प्रकार से ये जो पर्वत है ये दोनों भगवान को सम्मान प्रदान करता है। कृष्ण और बलराम के चरण स्पर्शों के कारण गोवर्धन पर्वत जो है बहुत उल्लसित प्रकट होता है। तात्पर्य यह जो अनुवाद है शिल प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 18वें अध्याय से 84 श्लोक का है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि गोवर्धन के ऐश्वर्य का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। पानी जो है वो बहुत ही सुगंधित ठंडे जल को या झरने को संबोधित करते हैं, जो कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल पीकर उसके अपने हाथ और मुंह पैर धोते हैं। गोवर्धन जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर जो शहद है इत्यादि या आम रस है उसको प्रदान करता है। सुयवास का मतलब है दुर्वा घास, जिसके जो धार्मिक अनुष्ठान या अर्घ्य किए जाते हैं। जो गोवर्धन है जो बहुत ही सुगंधित गाय के लिए बहुत ही सुंदर घास जो दूध का वर्धन करता है। और इस प्रकार से ये जो गायों का जो झुंड है उसको भी खिलाया जाता है। जो कंदर का मतलब है गुफाएं हैं जहाँ पे कृष्ण बलराम अपनी लीलाएं करते हैं। और जो जो गुफाएं हैं ये अगर जो गुफाएं हैं ज्यादा शीत में ज्यादा गर्मी में भी मदद करते हैं, बारिश हो रहा है तो भी मदद करते हैं। और ये बहुत सारे आभूषण भी प्रकट करता है और सुंदर सुंदर जगह बैठने के लिए और बहुत ही कोमल पत्थर भी है और बहुत ही ऐसे स्वाभाविक चीजों का भी गोवर्धन प्रदान करते हैं। और यह जो श्लोक है ये गोपियों ने कहा गया था जब वे घर पे थे अपने गांव में, जब कृष्ण और बलराम बाहर गए थे गायें चराने के लिए। लेकिन जो गोपिया उनके पास इतना तीव्र प्रेम था कृष्ण के लिए और इतने गहरी आसक्ति थी उनके लिए कि वास्तव में वे उन्होंने ये दृष्टि को अपने हृदय से उन्होंने देख लिया इन लीलाओं को और ऐसा लगा कि वे कृष्ण के साथ है गोवर्धन पर्वत में। ये पहला शब्द हंत जो है तो इसका जो समानार्थक शब्द है ओ, और इसका यहाँ का भावना है बहुत ही उल्लासित रूप से। जो गोपियां हैं उनको बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। हंतायम अध्री अयम और अयम का मतलब है यह और अध्री का मतलब है पर्वत। अयम का मतलब है यह और ऐसी चीज जो बहुत ही पास में हो। ये माइक्रोफोन है ध्वनिवर्धक है और वो जो वीडियो कैमरा है थोड़ा दूरी पे है लेकिन जो यो माइक्रोफोन है बहुत ही पास में है। और गोपिया कहते अयम ऐसा लग रहा था मानो वो उसके पास में ही है वो उसी जगह पे है। और अबला का मतलब है सखी और उसका वास्तविक अर्थ है बल्ला मतलब शक्तिशाली अबला मतलब कमजोर। जो गोपियां एक दूसरे को अबला कमजोर के रूप में संबोधित कर रहे हैं और कृष्ण का जो आकर्षण है उससे खुद को निकालने के लिए वो कमजोर हो जाती है। हमको भी कुछ कमजोरी है लेकिन उनकी तरह नहीं। हमारे पास कमजोरी है कि माया को बलि जाना। हरिदास वर्य हे सखी ये जो पर्वत है भगवान हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम अलग अलग भक्तों का वर्णन करता है हरिदासों का वर्णन करता है और तीन प्रमुख है। एक है महाराज युधिष्ठिर जब उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था कई सारे महान भक्त और राजा आए कई सारे महात्माएं आए और वे आए कृष्ण को ही देखने के लिए लेकिन वे युधिष्ठिर को देखने के लिए आए थे और पांडवों को देखने के लिए आए थे। और ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने युधिष्ठिर का वर्णन करने में उन्होंने बहुत आनंद लिया हरिदास के रूप में वर्णन करने में बहुत आनंद लिया हरि के महान भक्त के रूप में। और भगवान कृष्ण बारंबार उनके घर जाते थे वे उनके सखा के रूप में कार्य करते थे उनके दास के रूप में कार्य करते थे एक उनके समुपदेशक के रूप में कार्य करते थे और बहुत ही उनके पारिवारिक सदस्य थे। और जो महाराज युधिष्ठिर पांडव जो थे वो सारे भक्त कृष्ण के भक्त थे उनके जो पत्नी थे वो कृष्ण के भक्त थे और वे सारे अपने पारिवारिक सदस्यों को और नागरिकों को उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया। वे ऐसे बहुत ही उच्च परिवार था जो सारे लोग राजस्व यज्ञ में आए थे उनको कृष्ण के साथ देखने के लिए आए थे। और दूसरे हरिदास का वर्णन आता श्रीमद् भागवतम में वे उद्धव थे वो कृष्ण के चचेरे भाई थे और द्वारका में कृष्ण के वो संगी थे, कृष्ण की तरह देखते थे, दिखाई देते थे और कृष्ण की तरह गुण में थे उनमें। और जब कृष्ण को किसी को भेजना चाहते थे उनके सांत्वना देने के लिए, वृंदावन के वासियों के सांत्वना देने के लिए, तो उन्होंने उद्धव को भेजा। अब श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है कि कई महीने उद्धव जो है वृंदावन में ही रहे और वे उन्होंने वृंदावन का जो वासी है उनको बहुत उल्लासित अपने वचनों के द्वारा, कृष्ण के वचनों के द्वारा। और वे सब लोग कृष्ण से दुविरह के जो वेदना हो रहे थे वे तो भूल गए और इसीलिए उनको हरिदास के रूप में वर्णन किया जाता है। और सारे हरिदासों में गोवर्धन जो पर्वत है वो हरिदास वर्य है, जो हरि के सारे दासों में गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ दास है। और क्यों उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसका भी वर्णन आता है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श के कारण प्रमोद हर्षोल्लासित हुए थे। हमने परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज से सुना कि गोवर्धन पर्वत कितने उल्लासित थे कृष्ण के बाया हाथ के छोटे उंगली के स्पर्श के कारण, और हर चीज कृष्ण के लिए प्रसन्नता थे। सारे जो मूसलाधार वर्षा थे गोवर्धन के लिए प्रसन्नता थे, उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा था। यह गोवर्धन लीला है, लेकिन हर रोज कृष्ण और बलराम वो गोवर्धन पर्वत पर जाते थे, उसके ऊपर चलते थे और गोवर्धन हर्षोल्लासित होते थे और कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श के कारण। और यह जो है एक जो सर्वश्रेष्ठ दास है उसका एक लक्षण है, अपने स्वामी के सेवा करते समय बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त करते। अगर हमारे पास कोई सेवक है और अगर वो सेवक सेवा करने की इच्छा नहीं करता तो ये प्रसन्नदायक नहीं। अगर कोई सेवक सोच रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, मुझे अभी थकान आ गई, मुझे अभी विश्राम करना चाहिए, ये बहुत ही प्रेरणादायक नहीं है स्वामी के लिए। लेकिन अगर सेवक सोचता है कि अपने स्वामी की सेवा करते समय प्रसन्नता होती है, उत्सुकता है ज्यादा से ज्यादा सेवा करने में, वो उनके स्वामी को ज्यादा प्रसन्न करेगा। और जब स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं जो सेवक है वो और भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो सेवक प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वामी और भी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस तरह से बहुत ही दिव्य स्पर्धा होती है। और जो सेवक जो है वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने में लगते हैं और स्वामी जो है सेवक को प्रसन्न करने में लगते हैं, उनको देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यही जो है जो स्पर्धा है वो कृष्ण और उनके गोपियों के बीच में उनकी सुंदरता देखकर, कृष्ण की सुंदरता देखकर गोपियों की सुंदरता बढ़ती थी और गोपियों की सुंदरता देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ती थी और उसको देखकर और गोपियां प्रसन्न हो जाती थी और उसको देखकर कृष्ण और आनंदित होते थे। और यह हरि के जो सर्वश्रेष्ठ सेवक है उनकी ये भावना है। श्री प्रभुपाद जी भी इसी भावना में थे, वे कृष्ण की सेवा करने के लिए हर परिस्थिति में वो प्रसन्न थे। जब एक शिष्य श्री प्रभुपाद जी के साथ चर्चा कर रहे थे कि श्री प्रभुपाद के निवेदन के लिए उनके कार्यक्रम के लिए हर एक जगह पर वो पूछ रहे थे प्रभुपाद को, आपको यहाँ पे जाना अच्छा लगेगा क्या, आप यहाँ पे जाना पसंद करेंगे क्या, क्या हमें आपके लिए निवेदन करना चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा, मैं गाय की तरह हूँ, जहाँ पे भी आप मुझे रखोगे मैं दूध दे दूंगा, मुझे ये मायने नहीं रखता कि आप मुझे कहाँ पे लेके जाओगे, आप जहाँ पे भी लेके जाओगे। एक बार एक परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज प्रभुपाद को कहे कि मुझे मेरे पास केवल एक विभाग है, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, और कई सारे समस्याएं हैं और इतना मुश्किल है ये केवल एक विभाग एक कक्ष संभालने के लिए, और आपके पास पूरा सारा आंदोलन है, पूरे दुनिया भर का यह आंदोलन है, आप कैसे उसको संभालते हो कई सारे समस्याओं के साथ। और श्री प्रभुपाद ने कहा, समस्याएं, मुझे कुछ समस्याएं दिखती नहीं है, केवल मैं अपने गुरु महाराज की सेवा को देखता हूँ, यही संकल्पना है। उनके कर्तव्य है कि सेवा करना, और जो भी वो सामने आता है और जो भी उनके सामने आता है उनको लगता है कि सेवा का एक दूसरा तरीका है, एक अवसर है, तो इसलिए वह हमेशा प्रसन्न थे। फिर भी कुछ समय में उनको कुछ चिंताएं होते थे, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि चिंताओं के बारे में वर्णन कर रहे थे, माता यशोदा वो हमेशा चिंता में थे, वो दिव्य रूप से उनको चिंता होती थी एक माता के भाव में कृष्ण के लिए, तो श्रील प्रभुपाद को भी उस तरह की चिंता उनको होती थी उनके आंदोलन के लिए। एक बार जुहू में मैं गोवर्धन से बहुत दूर जा रहा हूँ वास्तव में, लेकिन लेकिन के श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, निरीक्षण किया एक षड्यंत्र अच्छा गया था कि वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो जो बांध काम का जो साध सामग्री थे उसको चोरी कर रहे थे, और ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के साथ श्रील प्रभुपाद आप कुछ खा नहीं रहे, क्या कुछ गलत हो गया? असल प्रभुपाद ने कहा, कैसे मैं खा सकता हूँ, मेरे संपत्ति को चुरा रहे हैं। उनके संपत्ति मतलब कृष्ण के थे, वो नैरोबी में थे प्रभुपाद जी उस समय, और हम जो में थे हमको पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी को नैरोबी में पता था क्या हो रहा है। और वो इस षड्यंत्र को ठीक करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे, एक भक्त जो ऐसे निर्माण कार्य के जो प्रमुख थे, वो सब प्रश्न प्रभुपाद को पूछ रहे थे। तो उन्होंने सुरभि को फोन किया, वास्तव में उनका नाम सौरभ था। जब उन्होंने सन्यास लिया तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम दिया सुरभि रवि पालयंतम स्वामी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, और अपने तरीके से प्रभुपाद जी ने कहा, मैं कृष्ण भावना में आया आनंद के जीवन के लिए, और उसके अलावा एक चिंता प्राप्त हो रही है। तो वो उनको बोल रहे थे कि उनको निकालने के लिए, तो उसी समय तो हमें बोल रहे थे हमें जब करिए सुखी हो जाइए, लेकिन एक अलग प्रकार का एक आनंद है ये दिव्य चिंताओं का, और वो भी एक आनंद है, वो भी चिंता है। और एक भक्त थे सिद्ध स्वरूप आनंद, तो एक बार उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती है, एक ही भक्त वो हमेशा चिंता में रहते आपके भक्त। और प्रभुपाद ने कहा, ये उनका प्रेम है, गोपियां हमेशा चिंता में थे कृष्ण के लिए। तो गोवर्धन में हम वापस आते हैं, प्रमोद गोवर्धन पर्वत हमेशा हर्षोल्लासित है, क्योंकि कृष्ण बलराम के चरण कमलों से वो स्पर्शित है, क्योंकि कृष्ण और बलराम जो थे उनके ऊपर चल रहे थे, और अभी हमें अच्छा नहीं लगता अगर कोई कोई अगर हमारे ऊपर चल रहा है तो कैसा लगेगा। तो कृष्ण और बलराम और जो गाय है बछड़े थे वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर चल रहे थे, और उनको उल्लास लगा। यह हमारे लिए एक संदेश है, एक हमारे लिए उपदेश है। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर चल रहे है, हमें उल्लासित होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार है उस भक्त की सेवा करने से, उस भक्त की सेवा करने से कृष्ण को हम प्रसन्न कर रहे हैं। यह भी इस श्लोक में एक उपदेश है, मानव तनोति सहगो गणवस्तवर्य। वे गोवर्धन कृष्ण और बलराम को सम्मान प्रदान कर रहे हैं, गाय और बछड़े के और ग्वाल बालों के साथ वो सम्मान प्रदान कर रहे गोपियों के साथ, और कैसे उन्होंने ये सम्मान प्रदान किया, ये सारे चीज अभी हमने पढ़े। ये कोमल घास, ताजा पानी, कंदमूल फल, कंदराएं, गुफाएं, बैठक है, आसन, और इस प्रकार से उन्होंने उसका सम्मान प्रदान किया। अमान न मान देने, हमें स्वयं के लिए कुछ सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों को सम्मान प्रदान करते हैं। और गोवर्धन जो है वह सेवा प्रदान करके, उनका सेवा के लिए शरीर प्रदान करके उन्होंने सम्मान प्रकट किया। और प्रभुपाद इस श्लोक के पर तात्पर्य लिखते कृष्णा पुस्तक में, गोवर्धन को पता था कि कृष्ण परम भगवान को प्रसन्न करना जो है, उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करने से परम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और गोवर्धन पर्वत को यह पता था। हाँ, उन्होंने कृष्ण बलराम की सेवा की, केवल उनकी सेवा की ऐसे नहीं, लेकिन ग्वाल बालों के, गायों के, बछड़ों की सेवा की, हर एक की सेवा की उन्होंने, सबके, गोवर्धन ने सबकी सेवा की, और उन्होंने उसके कारण कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। और कृष्ण ज्यादा प्रसन्न हो जाते जब वो हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं। और वो बहुत ही उल्लासित थे, आनंद में थे। कभी कभी हम बड़े बड़े लोगों की सेवा करना चाहते हैं, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी, और हम गुरु के सेवकों की सेवा करने से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें उसमें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए वंचित हो गए। अरे मैं गुरु महाराज की सेवा करता था, मैं अभी इसकी सेवा कर रहा हूँ, नहीं, हमें आनंद आना चाहिए। सेवकों का सेवक, दासों का दास होना चाहिए। तो कैसे गोवर्धन पर्वत में अपना हर्षोल्लास प्रकट किया, उसका भी वर्णन आता है। अलग अलग उसका लक्षण प्रकट होता है। तो वो उनका अति आनंद का लक्षण है, उनका जो पसीना था, जो गोवर्धन के ऊपर जो गिलावट है, वो उनका दिव्य पसीना है। और दूसरा एक उनका दिव्य आनंद का लक्षण है कि रोंगटे खड़े होना, और जो घास है गोवर्धन के ऊपर के, वह उनके बाल मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे। और गोवर्धन के ऊपर जो झरने हैं वो उनके दिव्य आश्रु है। वृंदावन में हर एक चीज सजीव है, एक व्यक्ति है, हर एक चीज, हर एक जन कृष्ण के प्रेम के लिए मत है, प्रेम से युक्त है। और कृष्ण के सारे भक्तों में, दासों में गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों के लिए यह गोवर्धन इतना विशेष क्यों है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। हमने गर्गमुनि के बारे में सुना है, ब्राह्मणों के बारे में जिन्होंने नामकरण संस्कार किया कृष्ण का कुंडली पढ़कर, और गर्गमो ने उनकी एक पुत्री है, उनकी एक पुत्री जिसका नाम है गार्गी, गार्गी वृंदावन में आती थी, वे गोपियों को उपदेश करते थे, आध्यात्मिक शिष्टाचार में वे उपदेश करते थे। जो गोपियां थे कि व्यक्ति की इच्छाएं तभी पूर्ण होते हैं जब महात्माओं की कृपा के कारण। तो जो गोपियां थे वो सोच रहे थे हमें महात्माओं का आश्रय लेना चाहिए। तो कृष्ण के जो मरने की ओर सेवा करने की जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। तो वो सोच रहे थे कहाँ पर हम ऐसे महात्माओं को प्राप्त करें, और फिर श्रीमद् भागवतम में वो तत्व का वर्णन आता है। शान महोत्सव पहले स्कंद में, पहले स्कंद के शुरू से दूसरे स्कंद में, तीसरे चौथे पांचवे हर स्कंद में वर्णन आता है। महोत्सव द्वार होते तो बातें सोच रहे थे हमें किसी महात्माओं की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने ये श्लोक बोला, भगवान हरि के सारे दासों में सेवकों में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम गोवर्धन के पास जाते हैं, गोवर्धन की कृपा प्राप्त करते हैं, तब हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण को मिलकर उनकी सेवा करने की पूरी हो जाएगी। और जैसे हम जानते हैं कि जो जवान गोपियां थे अपने माता पिता के संरक्षण में थे, उनके कुछ कुछ चीज प्रसंग में अपने पतियों के, उनको यह संभव नहीं होता था कि अपने घर छोड़कर कृष्ण को मिले। लेकिन जो गोपियां वो इतने बुद्धिमान थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम बोले कि अपने पालकों को या अपने माता पिताओं को बोले, अगर हम गोवर्धन के पास गए, हरिदेव को हम पूजा करें, गोवर्धन परिक्रमा से पहले हम हरिदेव को दर्शन लेकर, हरिदेव का दर्शन लेकर उनको हम पूजन करते, अगर हम अपने अधिकारियों को, माता पिताओं को, वरिष्ठों को बोले कि हम मानसी गंगा पर जाकर हरिदेव की पूजा करने जा रहे, तो वो हमें जाने को छोड़ देंगे। तो गोपियां सोच रहे थे कि हरिदास से जो कृपा मिलेगी, वो कृपा हरिदेव से भी बढ़कर होगी, और वो सत्य है। हमें हमेशा भक्त की कृपा के याचना करनी चाहिए, और अपने आप कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो हमने देखा है कैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण है, उसमें कुछ संदेह नहीं है कि कृष्ण, ये गोवर्धन पर्वत कृष्ण है कि नहीं, उसमें कुछ शंका नहीं है। लेकिन जो गोपियां जो है कृष्ण गोवर्धन के पूजा कर रहे थे कि ऐसे नहीं कि वो कृष्ण है, लेकिन वो एक हरिदास वर्य है, ऐसे भावना में वो गोपियां करते थे। कृष्ण के दास की जो हमें कृपा प्राप्त हो गए, कृष्ण से जो कृपा प्राप्त होगी उससे भी महान होगी। गोवर्धन जो पर्वत है वो चैतन्य महाप्रभु की तरह है, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है भक्त के भाव में, और भक्त के भाव में वो ज्यादा कृपालु है कृष्ण से भी। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो कृष्ण भी है और भक्त भी है, और ऐसे भाव में हम ज्यादा कृपा प्राप्त करते कृष्ण से। तो हम गोवर्धन पर्वत जाएंगे, हाल ही में हम जाएंगे, हम किसी भी भावना में उनकी भक्ति कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं कृष्ण के रूप में या उनके दास के रूप में। लेकिन गोपियां जो है वे गोवर्धन को एक कृष्ण के दास के रूप में देखते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उनके दिव्य आनंद के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना, जो वो गोवर्धन आए थे वृंदावन में, और जब उन्होंने पहली बार गोवर्धन शिला को देखा, उन्होंने उसको आलिंगन किया, राधा रानी के भाव में उन्होंने आलिंगन किया, लग रहा था मानो अपने प्रियकर को मिले हैं। और एक प्रसंग आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, और जब उन्होंने देखा चाटक पर्वत को देखा, एक पर्वत के तरह है, गोपाल जी उसको एक रेत का टीला बोलते थे, जब उन्होंने वो रेत का टीला था उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु को लगा कि गोवर्धन का पर्वत है। वो चैतन्य महाप्रभु इस भाव में उसकी तरफ दौड़ने लगे, तब वे अंतरंग चेतना में गए। श्री कृष्णदास कौरव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु तीन प्रकार की चेतनाएं थे, अंतरदशा, अंतरंग, बाह्य दशा, बाह्य चेतना, और अर्ध बाह्य दशा, अर्ध बाह्य दशा। तो और वह अंतरंग चेतना में चले गए, उन्होंने देखा राधा और कृष्ण पर्वत, उन्होंने देखा कि गोवर्धन के अंदर की गुफा है, उसके अंदर राधा और कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, और गोपी सखिया उनके साथ जा रहे थे, और एक गोपी चैतन्य महाप्रभु को बोली कुछ फूल इकट्ठा करे, चुन के लाए राधा कृष्ण के सेवा के लिए। यह अंतरंग रूप से चल रहा था, और बाह्य रूप से चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों ने देखा चैतन्य महाप्रभु बहुत पागल की तरह चटक पर्वत की तरफ दौड़ रहे हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु वो अपने जब दो पागलपन में प्रवेश करते थे, वो कुछ भी करते थे, वो कभी अपने आप को सागर में फेंक देते थे, वो पर्वत से ऊपर ऊपर से नीचे गिरते थे, कुछ भी करते थे, जो वो अपने अंतरंग शक्ति में थे, वो उनके शरीर बहुत ही अलग अलग प्रकार के आनंद के भाव विभोर लक्षण प्रकट करते थे, और महाप्रभु के भक्तों के लिए ऐसा सहन करना बहुत मुश्किल होता था। उनका शरीर जो मतलब छन्न छन्न होकर टुकड़े टुकड़े होने की संभावना होती थी, तो भक्त दौड़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने के लिए। जब उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु दौड़ रहे थे गोवर्धन पर्वत की तरह, और वो बेहोश हो गए और गिर गए बहुत ही दिव्य भाव में, और ऐसे अति भाव विभोर लक्षण देखकर सारे भक्तगण उनको भाई चेतना बुलाने का प्रयास कर रहे थे और वे कीर्तन कर रहे थे, गाने लगे हरि बोल गाने लगे। ये बहुत ही विरोधाभासक था कि जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु का रक्षण करना चाहते थे बहुत ही ऊपरी रूप से लगने वाले वेदनादायक अनुभव से, लेकिन अंतरंग रूप से चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु अंतरंग रूप अंतर चेतना से थोड़ा बाहरी चेतना में आ गए। मैंने राधा और कृष्ण को देखा, उनके सखियों को देखा, वे सारे गोवर्धन पर्वत में थे, वो गुफा में जा रहे थे और एक गोपी ने मुझे पूछा फूल चुनने के लिए, और मैं इतने आनंद में थे कि मैं उस सेवा प्राप्त हो गया, राधा कृष्ण के लिए सेवा प्राप्त हो गई। और आप सब लोग आ गए, आपने इतना सारा घनघोर आवाज निकाला, और अभी कहाँ पे राधा कृष्ण है, कहाँ पे गोवर्धन, और वे सारे लोग रोने लगे, वे रोने लगे गृह में। ये कुछ लीलाएं हैं गुह्य, ये दिव्य आनंद के कुछ गुह्य और अंतरंग लीलाएं हैं भगवान और उनके भक्तों के बीच में। और इस तरह से गोवर्धन पर्वत इतना महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु हालांकि वो सामान्य रूप से रावधारणी के भाव में होते हैं, लेकिन इस लीला में वे एक राधा रानी के दासी के भाव में थे, एक राधा रानी के दासी के भाव में थे, फूल चुनने की सेवा थे, बहुत ही अंतरंग गोपियों को फूल देते देना था और गोपियां राधा कृष्ण को देने थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो भाव भी प्रकट किया। तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भाव जो था वो गोवर्धन से संबंधित था। गोवर्धन जो है सबसे कृपालु है, दयालु है। अगर हम गोवर्धन को पा जाते हैं श्रीमद् भागवतम के भाव में, भक्त गोपियों के भाव में, श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव में, हमारे आचार्यों के भाव में हम प्रार्थना करते हैं और गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं और गोवर्धन के पास निवास के लिए, और गोवर्धन अष्टक है श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा गोवर्धन अष्टक रचा गया है, और हर एक पंक्ति के अंत में वो लिखते हैं कि वो गोवर्धन के पास वह निवास की अभिलाषा रखते हैं। तो ये भक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद है, सर्वाभीष्ट प्रदाता वो भक्तों के सारी इच्छाओं को प्रदान करते हैं। तो जो भी हमारी इच्छा है, गुरु और गौरांग की सेवा करने की इच्छा, जो भी हमारे राधा और कृष्ण और उनके सेवकों के उनके पार्षदों के, हमें गोवर्धन के पास जाना चाहिए ऐसे भावनाओं के साथ, ऐसे इच्छाओं के साथ, वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। और साथ ही साथ हमें ध्यान भी रखना चाहिए अपनी इच्छाओं का, और एक कहानी है, मुझे ज्यादा विश्लेषण पता नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो सोचता था वो उसको प्राप्त होता था, तो कितना अच्छा। अगर अगर शेर आया तो क्या जाएगा, शेर आकर उसको खा लिया। तो हमें ऐसे कोई भौतिक इच्छा लिखनी चाहिए, और जो हमारे शेर खोखर शेर की तरह हो जाएगा, हमारा जो दृढ़ निश्चय है सेवा करने के कृष्ण के उनके भक्तों की, उसको खा लिया जाएगा। तो हमारे हृदय के अंतरंग अंदरानी इच्छा और शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि राधा कृष्ण के उनके भक्तों के साथ दास 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 स्वामी दास की सेवा करने की इच्छा, ऐसी इच्छाओं को हमें रखना चाहिए। और ऐसी इच्छा बहुत ही कृपालु पूर्वक कृपा पूर्वक पूरी की जाएंगे हरिदास वर्य के द्वारा। श्री गौ गोवर्धन की जय, श्री गिरिधारी की, गौर भक्त वंद की, निताय गौर क्रमानंदे, हरे कृष्ण।